एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो अमेरिकी साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है, लेकिन जब 1955 में ये छपा था तो इसे बहुत कम लोगों ने समझा।
हाँ, यह शायद समझना ही नहीं चाहा। बहुत जटिल, बहुत बड़ा।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं विलियम गैरिस के पहले उपन्यास द रेकग्निशन की। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक तरह की पहेली है, एक ऐसी रचना जिसने आगे चलकर, जिसे हम उत्तराधुनिक साहित्य कहते हैं, उसकी जमीन तैयार की।
सही कहा, और आज हम इसी पहेली को, इसी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। गैरिस ने एक ऐसी दुनिया बुनी है जहां असली और नकली के बीच, मतलब प्रामाणिकता और जालसाजी के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
हाँ, और ये सिर्फ कला की बात नहीं है, विश्वास, रिश्ते, सब कुछ जैसे एक नकल के जाल में फंसा हुआ लगता है। एक तरह का आध्यात्मिक खालीपन है उस दुनिया में।
और गैडिस के पौत्र उसी खालीपन में, उसी धुंधलेके में अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अमेरिका की, खास तौर पर 1950 के दशक के न्यूयॉर्क शहर की, वहां का जो बोहेमियन माहौल था, ग्रीनविच विलेज का।
तो पहले खुद लेखक की बात करते हैं, विलियम गैडिस की। 20वीं सदी के अमेरिकी साहित्य में उनकी आवाज बिल्कुल अलग थी, मतलब बेझिझक, इंटेलेक्चुअली बहुत एम्बिशियस
और कला को लेकर एकदम समर्पित। उनके लिखने की शैली देख लीजिए, वो लंबे घुमावदार वाक्य।
हाँ, और वो संवाद जहां पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है।
बिल्कुल, और इतने सारे संकेत अलग अलग जगहों से लिए हुए, धर्म से, इतिहास से, मिथकों से। पाठक को काफी मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए।
और शायद यही जटिलता, ये बिखराव उस आधुनिक जीवन की सच्चाई को दिखाता है जिसके बारे में वो लिख रहे थे। वो लगातार जूझते हैं सवालों से, प्रामाणिकता क्या है, कला का क्या हो रहा है जब वो बाजार की चीज बन जाती है।
हाँ, और शायद इसीलिए जब द रिकग्निशन पहली बार आई तो ज्यादातर समीक्षकों ने उसे खारिज कर दिया। कहा कि यह बहुत मुश्किल है, समझ से बाहर है, लेखक बस अपना ज्ञान दिखा रहा है।
और नतीजा ये हुआ कि किताब चली नहीं, बिल्कुल नहीं बिकी।
और गैडिस पर इसका इतना असर हुआ कि वो लगभग 20 साल तक, मतलब साहित्यिक दुनिया से एक तरह से गायब ही हो गए।
लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बदला, लोगों ने उपन्यास को दोबारा पढ़ा, उसे समझने की कोशिश की, और तब जाकर इसकी असली कीमत पहचानी गई।
हाँ, इसे फिर अमेरिकी साहित्य की एक महान कृति माना गया। पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तराधुनिकतावाद का एक तरह से शुरुआती टेक्स्ट। बाद में तो थॉमस पिंचन, डॉन डिलिलो जैसे बड़े लेखकों ने इसकी बहुत तारीफ की।
तो एक तरह से जिसे पहले नकारा गया उसे बाद में रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया।
बिल्कुल, और ये शब्द रिकग्निशन, पहचानना, ये उपन्यास के शीर्षक में भी है और इसकी आत्मा में भी। इसका एक सीधा इशारा है एक बहुत पुराने ईसाई धार्मिक टेक्स्ट की तरफ, क्लेमेंटाइन रिकग्निशन। उसमें हीरो क्लेमेंट अपने खोए हुए परिवार वालों को पहचानने की यात्रा करता है।
अच्छा, तो गैडिस के उपन्यास में भी यही तलाश है, झूठ और नकल के इस अंबार में असली क्या है, सच्चा क्या है, उसे पहचानना।
हाँ बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, उत्तराधुनिकतावाद की कई बातें इसमें दिखती हैं। कहानी का बिखरा होना, स्थापित विचारों पर सवाल उठाना, कला और नकल के बीच की धुंधली होती सीमाएं, ये सब गैडिस के शैली और उनके विषय दोनों में झलकता है। तो मूल सवाल क्या है उपन्यास का? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस दुनिया में जहां चारों तरफ नकल है, झूठ है, कॉपी है, वहां ओरिजिनल क्या है, प्रामाणिक क्या है?
और ये सिर्फ कला तक सीमित नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। गैडिस इसे जीवन के हर पहलू पर लागू करते हैं, विश्वास, रिश्ते, पहचान, सब पर। ये उपन्यास एक तरह से ध्यान है उस आध्यात्मिक खालीपन पर जो नकल और दिखावे से भरी दुनिया में पैदा होता है। कहानी घूमती है 1950 के दशक के न्यूयॉर्क में, वहां के कलाकारों, बुद्धिजीवियों और ऐसे लोगों के इर्द गिर्द जो इस खोखलेपन से जूझ रहे हैं।
और गैडिस ने उस माहौल को रचा भी बहुत कमाल का है, एक विशाल शोरगुल भरा, मतलब क्योटिक कैनवस, ग्रीनविच विलेज, वो बोहिमियन पार्टियां जहां बहसें हो रही हैं।
और उन पार्टियों में कौन कौन है? असफल कलाकार हैं, बड़े दावे करने वाले आलोचक हैं, भ्रष्ट बिजनेसमैन हैं, दुनिया से मोह भंग हो चुके बुद्धिजीवी हैं, सब एक जगह जमा है।
और वहां एक टकराव लगातार दिखता है, एक तरफ है सच्ची कलात्मक अभिव्यक्ति की चाह, दूसरी तरफ है बाजारू सफलता का दबाव, एक तरफ है आध्यात्मिक खोज, दूसरी तरफ है ये भौतिक चमकदमक और भ्रष्टाचार।
हाँ, गैडिस एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जहां असली कला को शायद कोई पूछ ही नहीं रहा, और जो चालाकी से नकल की गई है उसकी वाहवाही हो रही है। धर्म बस एक रस्म बन गया है, और इंसानी रिश्ते वो भी जैसे बस मतलब के रह गए हैं।
चलिए अब कहानी के मुख्य पात्र पर आते हैं, वायत गुआयन, एक बहुत ही टैलेंटेड युवा पेंटर। उसके पिता एक पादरी हैं, प्रोटेस्टेंट।
और वायत शुरू से ही कला की सच्चाई और धार्मिक विश्वास के सवालों में उलझा रहता है। उसकी शुरुआती पेंटिंग्स में बहुत प्रतिभा दिखती है, कमाल की, लेकिन फिर उस पर एक तरह की निराशा छा जाती है।
उसे लगने लगता है कि इस आधुनिक दुनिया में कुछ भी मौलिक, कुछ नया बनाना संभव ही नहीं है।
हाँ, कुछ ऐसा ही। और यही निराशा, यही संकट उसे एक बहुत अजीब रास्ते पर ले जाता है। वो पुराने महान चित्रकारों की नकलें बनाना शुरू कर देता है, खासकर 15वीं सदी के जो फ्लेमिश मास्टर्स थे, जैसे बॉश या वैन आइक, जिनकी कला बहुत डिटेल्ड और अक्सर गहरी धार्मिक होती थी।
वो उनकी पेंटिंग्स की हूबहू नकल करता है, जालसाजी।
हाँ, जालसाजी। लेकिन कमाल की बात यह है, और ये समझना बहुत जरूरी है, कि वो ये शोहरत या पैसे के लिए नहीं करता।
तो फिर क्यों?
ये जैसे अतीत के उन महान कलाकारों के साथ एक हताश संवाद करने की कोशिश है, एक तरह से ईश्वर की निंदा जैसा भी। जैसे वो कह रहा हो, देखो, मैं तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ, तुम्हारी कला को दोहरा सकता हूँ, लेकिन क्या आज की दुनिया में इसका कोई मतलब है? क्या ये असली है?
और यहीं गैडिस एक गहरा विरोधाभास दिखाते हैं। वायत अपनी सबसे बेहतरीन कलात्मक क्षमता इसी जालसाजी में दिखाता है।
बिल्कुल, लेकिन ऐसा करते हुए वो अपनी पहचान खोता जाता है, अपना नैतिक बोध खोता जाता है। उसकी यात्रा खुद को तबाह करने की यात्रा बन जाती है, और शायद उसी तबाही में वो मुक्ति भी खोज रहा है।
ये बहुत पेचीदा है। क्या गैडिस ये कह रहे हैं कि असलियत की तलाश आपको नकल के रास्ते पर ले जा सकती है, या कि सच्ची मौलिकता शायद अब संभव ही नहीं है और इसे महसूस करने के लिए जालसाजी ही एक रास्ता बचा है?
शायद ये सवाल वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। अंत में वायत ये सब छोड़ देता है, अपनी पहचान मिटाने की कोशिश में स्पेन चला जाता है, मठों में भटकता है।
वायत के सफर में एक और किरदार बहुत अहम है, बेसिल वैलेंटाइन। ये एक कला समीक्षक है।
हाँ, और बड़ा चालाक। वो वायत के लिए कभी गुरु जैसा है तो कभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन। वैलेंटाइन उस बौद्धिक और नैतिक भ्रष्टाचार का प्रतीक है जो आधुनिक संस्कृति में, खासकर कला की दुनिया में फैला हुआ है।
वो वायत की प्रतिभा को पहचानता है,
पहचानता है, और उसे जालसाजी के लिए उकसाता भी है, लेकिन कला के लिए नहीं, अपने मुनाफे के लिए। उसकी दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, कला का कोई आंतरिक मूल्य नहीं, बस बाजार का मोल है।
और उसका एक साथी भी है, रेक्टॉल ब्राउन। वो आर्ट डीलर है।
हाँ, मोटा लालची सा। वो वायत की बनाई नकली पेंटिंग्स को बेचता है। अगर वैलेंटाइन बौद्धिक चालाकी का प्रतीक है, तो ब्राउन एकदम नग्न भौतिकवाद का। उसके लिए कला बस एक और सामान है।
तो ये दोनों मिलकर उस सिस्टम को चलाते हैं जो वायत जैसी प्रतिभा को एक तरह से इस्तेमाल करता है और खत्म कर देता है। वायत का उनके साथ रिश्ता भी बड़ा अजीब है, शोषण का भी है और एक तरह की निर्भरता का भी।
और फिर एक और मजेदार किरदार है, ऑटो पियवना। वो वायत का जैसे एक कॉमिक, थोड़ा बेचारा सा लगने वाला आईना है।
वो लेखक बनना चाहता है ना?
हाँ, लेखक, नाटककार, लेकिन उसमें कोई मौलिक विचार नहीं है। तो वो क्या करता है, दूसरों की जिंदगी की कहानियां चुराता है, झूठी पहचाने ओढ़ लेता है, कभी कुछ बनता है कभी कुछ।
तो वो रोजमर्रा की आम नकलीपन का प्रतीक है, वो छोटा मोटा झूठ, वो दिखावा।
हाँ बिल्कुल, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है।
कुछ और किरदारों का जिक्र भी करना चाहिए, शायद संक्षेप में। एस्थर है, वायत की पत्नी।
हाँ, एस्थर। उनका टूटता हुआ रिश्ता जैसे दिखाता है कि इस नकली दुनिया में सच्चा मानवीय जुड़ाव भी कितना मुश्किल, शायद नामुमकिन हो गया है।
और एक संगीतकार है, स्टैनली।
स्टैनली, वो जिसे शुद्ध कला के प्रति समर्पण का प्रतीक है, चर्च के ऑर्गन पर पूरी लगन से एक महान संगीत रच रहा है, बिल्कुल मग्न होकर।
लेकिन उसका अंत बड़ा दुखद होता है।
हाँ, बहुत मार्मिक। वो उसी ऑर्गन के नीचे दबकर मर जाता है जिस पर वो अपनी मास्टरपीस बना रहा था। शायद गैडिस ये कह रहे हैं कि शुद्ध कला की खोज की कीमत बहुत भारी हो सकती है, जानलेवा भी।
और वायत के पिता रेवरेंड गुआयन,
वो आधुनिक समाज में धार्मिक विश्वास के कमजोर पड़ने, उसके क्षय को दिखाते हैं। उनकी अपनी बौद्धिकता उन्हें पारंपरिक आस्था से दूर ले जाती है, लेकिन उन्हें कहीं और पहुंचाती भी नहीं। वो भी एक तरह के खालीपन में है।
तो इन सब किरदारों के जरिए गैडिस कहानी को बुनते हैं, लेकिन ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक विशाल उलझा हुआ जाल है, जैसे आधुनिक जीवन खुद है, बिखरा हुआ, कई दिशाओं में जाता हुआ। कहानी शुरू होती है वायत के बचपन से, न्यू इंग्लैंड में। उसके पिता का कैल्विनिस्ट प्रभाव, अपराध बोध।
फिर पेरिस में उसकी पढ़ाई, एस्थर से मुलाकात, यूरोप में उसका मुंह भंग।
हाँ, और फिर आखिरकार वो वैलेंटाइन और ब्रॉन से मिलता है और जालसाजी के उस सौदे को मान लेता है, जैसे अपनी आत्मा गिरवी रख देता है।
उपन्यास का दूसरा हिस्सा सबसे बड़ा और शायद सबसे जटिल है। वो हमें ग्रीनविच विलेज की उस दुनिया में ले जाता है। अंतहीन पार्टियां, शराब, बहसें,
पात्रों की भीड़ है, संवाद अक्सर टूटते हैं, कोई किसी की पूरी बात नहीं समझता। ये उस दौर के बौद्धिक खोखलेपन और कम्युनिकेशन गैप को दिखाता है। इसी माहौल में वायट छिपकर अपनी जालसाजियां कर रहा है, अकेला है, अंदर से टूट रहा है।
एस्थर से उसका रिश्ता भी इसे हिस्से में बिखरता है और ऑटो जैसे नकली लोग फल फूल रहे हैं। गैडिस यहाँ उस पूरे समाज पर बहुत तीखा व्यंग्य करते हैं।
और फिर आता है तीसरा हिस्सा, ये विघटन का, बिखराव का हिस्सा है। वायट अपनी आखिरी नकली पेंटिंग को नष्ट कर देता है, न्यूयॉर्क छोड़कर भाग जाता है, अपनी पहचान से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है।
स्पेन पहुंचता है एक मठ हुए, शायद प्रायश्चित के लिए या खुद को मिटा देने के लिए।
ये स्पष्ट नहीं है, शायद दोनों। बाकी किरदारों का भी पतन होता है, ऑटो पकड़ा जाता है, ब्राउन मर जाता है, स्टैनली का वो दुखद अंत होता है। उपन्यास का अंत कोई साफ जवाब नहीं देता।
हाँ, वो जो आखिरी सीन है जहाँ वायट मठ में एक पुरानी पेंटिंग को रेस्टोर कर रहा है।
हाँ, वो क्या ये गुमनामी में बिना नाम की चाह के की गई कला के जरिए मुक्ति की कोई धुंधली सी उम्मीद है? शायद। गैडिस हमें सोचने के लिए छोड़ देते हैं, कोई आसान जवाब नहीं।
तो इस पूरी जटिल यात्रा से कौन से मुख्य विषय उभर कर आते हैं? सबसे बड़ा तो वही है, प्रामाणिकता बनाम जालसाजी, ऑथेंटिसिटी वर्सेस फॉर्जरी।
बिल्कुल, और जैसा हमने पहले कहा, ये सिर्फ कला की बात नहीं है। नकली पहचानें जैसे ऑटो की, चुराए हुए विचार, झूठे एहसास, खोखले धार्मिक रीति रिवाज, नकल हर जगह है।
तो सवाल ये है कि क्या इस नकल के समुद्र में सचमुच कुछ मौलिक संभव है? और गैबर्स एक और पेचीदा सवाल उठाते हैं, क्या कभी कभी नकल या जालसाजी ही किसी गहरे सच को उजागर कर सकती है?
हाँ, और ये भी दिलचस्प है कि गैडिस खुद अपने उपन्यास में इतने सारे दूसरे टेक्स्ट्स, मिथकों, विचारों का इस्तेमाल करते हैं, इतने हवाले देते हैं कि लगता है जैसे ये किताब खुद एक तरह की बौद्धिक नकल या विनियोग, एप्रोप्रिएशन है। वो जैसे मौलिकता के विचार पर ही सवाल उठा रही हूँ।
दूसरा बड़ा मुद्दा जो साफ दिखता है वो है कला का बाजारूपन, कैसे कला का व्यवसायीकरण हो जाता है।
हाँ,
गैडिस कला की दुनिया पर बहुत तीखी टिप्पणी करती हैं, जहां कला की गुणवत्ता से ज्यादा उसकी बाजार में कीमत देखी जाती है। ये उस समय के अमेरिकी समाज की भी आलोचना है, जहां संस्कृति तेजी से बिकाऊ माल बन रही थी।
और इससे जुड़ा हुआ है आध्यात्मिक खोज और धर्म के पतन का विषय।
बिल्कुल, आधुनिक दुनिया में पारंपरिक विश्वास की जगह क्या ले रहा है? धर्म या तो खोखला कर्मकांड बन गया है या फिर अलग अलग विचारों की एक उलझी हुई खिचड़ी। गैडिस के पात्र अलग अलग तरीकों से अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं, कोई धर्म में, कोई प्राचीन रहस्यवाद में, कोई नशे में। वायत की जालसाजी भी शायद एक तरह की विकृत प्रार्थना है, ईश्वर से या कला की आत्मा से एक हताश संवाद।
हो सकता है ये भी एक व्याख्या है। फिर पहचान और आत्मज्ञान की खोज का थीम भी बहुत मजबूत है।
हाँ, लगभग हर पात्र अपनी पहचान को लेकर उलझन में है, अक्सर वो खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। वायत का आखिर में गायब हो जाना, पहचान मिटा देना, इसी संकट का चरम है।
और सामाजिक और सांस्कृतिक आलोचना तो है ही। गैडिस उस दौर के बुद्धिजीवियों के दिखावे पर, व्यापार और राजनीति के भ्रष्टाचार पर, समाज में ऊपर चढ़ने की होड़ पर, सब पर व्यंग्य कसते हैं।
और इन सब के जरिए गैडिस असल में सत्य और यथार्थ की प्रकृति पर ही सवाल खड़े कर देते हैं।
हाँ, अगर एक नकली पेंटिंग भी देखने वाले में असली सौंदर्य का अनुभव जगा सकती है, तो फिर सच और सुंदरता का रिश्ता क्या है? अगर एक झूठी पहचान कभी कभी असली से ज्यादा गहरे सच बता सकती है, तो फिर व्यक्तिगत यथार्थ क्या है?
उनकी शैली भी इसी उलझन को दर्शाती है। वो बिखराव, वो बिना नाम के संवाद, वो संकेतों का जाल, पाठक भी उसी भ्रम में पड़ जाता है।
बिल्कुल, ये उपन्यास आसान जवाब नहीं देता। ये पाठक को सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर करता है। ये कोई ऐसी किताब नहीं जिसे आप आराम से पढ़ के किनारे रख दें। यह आपसे जूझती है, आपको चुनौती देती है।
तो इस उपन्यास को पढ़ने का अनुभव कैसा रहता है? भारी तो है, इसमें कोई शक नहीं।
भारी है, लेकिन गहरा है, उदासी भरा भी है, मार्मिक भी। आप पात्रों के संघर्ष से जुड़ते हैं, उनकी उस प्रामाणिकता की तलाश से, उनकी पीड़ा से। यह आपको अपने जीवन में भी सोचने पर मजबूर करता है, क्या असली है, क्या नकली।
खास तौर पर जो लोग रचनात्मक काम करते हैं, कलाकार, लेखक, संगीतकार, वो शायद वायत के संकट से ज्यादा जुड़ पाते होंगे. मौलिकता की तलाश, बाजार का दबाव, अपनी कलात्मक ईमानदारी को कैसे बचाए रखें, ये सब सवाल.
हाँ, ये एक ऐसी रचना है जो अपनी बौद्धिक गहराई और कलात्मक ईमानदारी से पाठक को हिला देती है. ये पहचान, कला, मूल्य, विश्वास के बारे में वो बुनियादी सवाल उठाती है जिनका कोई सीधा जवाब नहीं है.
ये हमें शायद इस बात के प्रति ज्यादा सचेत करती है कि हमारे आधुनिक जीवन में झूठ और नकल कितने अलग अलग रूपों में मौजूद हैं, कैसे मूल्यों का पतन हो रहा है, कैसे कला व्यापार बन रही है, कैसे एक आध्यात्मिक खालीपन बढ़ रहा है.
बिल्कुल, गैडिस ने इन चुनौतियों को बहुत पहले पहचान लिया था.
शायद ये उपन्यास हमें यही याद दिलाता है कि इस धुंधली दुनिया में जहां असली और नकली इतने मिले जुले हैं, वहां सच्ची कला और सच्चे आत्म की तलाश कितनी मुश्किल है, पर उतनी ही जरूरी भी.
हाँ, ये एक जोखिम भरी यात्रा है, पर शायद सच्ची पहचान की कोई झलक इसी यात्रा में, इसी संघर्ष में मिलती है. ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि बाजारवाद और सतहीपन के इस दौर में अपनी प्रामाणिकता को बचाए रखना एक लगातार चलने वाला संघर्ष है. गैडिस ने दशकों पहले हमें इसके बारे में सोचने पर मजबूर किया था.
ये संवाद यहीं समाप्त होता है. फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ. ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है.